समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम की ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार वैष्णवी, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद मी शगुन चोपड़ा एंड वैष्णवी। शी वाज टेलिंग यू अबाउट द प्रोग्राम एंड ऑफ कोर्स वी विल बिगिन विद अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, देन आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। इट्स फुल ऑफ फेस्टिविटीज, द रीसेंट, द ऑन गोइंग फेस्टिविटीज आई मस्ट एड। ऑल्सो वी हैव रिपोर्ट्स, capsules and business updates and our tributes at the end of the program. So listeners, stay tuned with us for roughly 30 minutes. First, we are beginning with the headlines. Election Commission asks political parties and candidates for responsible use and disclosure of synthetic and AI-generated content during campaigning in Bihar Assembly elections.
देश के विभिन्न हिस्सों में 4 दिवसीय छठ पूजा समारोह शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी।
इंडिया कॉल्स अपॉन पाकिस्तान टू एंड ग्रेव एंड ऑन गोइंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन इट्स इलीगली ऑक्यूपाइड एरियाज, पर्टिकुलरली इन जम्मू एंड कश्मीर।
मौसम विभाग ने आज गुजरात और दक्षिणी राज्यों के तटीय इलाकों में तेज बारिश का अनुमान जताया है।
Listeners, this is our segment Dateline India, and today the air is filled with devotion, discipline and divine energy as the 4-day-long festival begins, 4-day festival of Chhath Puja. From the ghats of Patna to the banks of the Yamuna in Delhi, from small towns to bustling metros, millions of devotees, I should say, they are known as the devotees. They are preparing to offer their prayers to Surya Dev, the sun god, and Chhati Maiya, the divine mother who blesses all with health, happiness, and prosperity. This sacred festival, one of the oldest known to mankind, celebrates the eternal bond between nature and between humanity. It honors the setting and rising sun. This is a reminder that balance, humility and gratitude are the true pillars of life, Vaishnavi.
जी बिल्कुल, और शगुन अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा छठ पर्व के महत्व को बताना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कैसे ये छठ पर्व 4 दिन का महोत्सव होता है। छठ पूजा 4 दिन का ऐसा हिंदू त्योहार है जो सूर्य भगवान और छठी मैया को समर्पित है। ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। ये त्योहार जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आभार व्यक्त करने और परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगने का समय है। पहला दिन नहाए खाए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करता है और आज छठ पूजा के पहले अनुष्ठान नहाए खाए की ही शुरुआत है
जी।
भक्त अपने दिन की शुरुआत नदियों, तालाबों या अन्य किसी जल स्रोतों में पवित्र डुबकी लगाकर करते हैं, जो तन और मन की शुद्धि का प्रतीक है। स्नान के बाद वे एक साधा सात्विक भोजन तैयार करते हैं, जिसमें आमतौर पर अरवा चावल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है, जो कि मिट्टी के चूल्हे पर पकाया जाता है। ये भोजन व्रतियों के कठोर उपवास शुरू करने से पहले का आखिरी भोजन होता है।
वंडरफुल, एंड थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग आवर लिसनर्स दैट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एसेंस ऑफ छठ। This is actually faith, based on faith, discipline and also nature. And we were also telling you that it celebrates the eternal bond between nature and humanity. So unlike the many festivals, they are filled with pomp and grandeur. Well, Chhath Puja stands out for its simplicity and its discipline. And there are no idols, no elaborate decorations, only nature, purity and prayer. Each offering, which involves sugarcane, the thekua, the fruits, it reflects the deep connection between human life and the earth's bounty. Every ritual performed at sunrise and sunset, then it reinforces the belief that energy, like the sun itself, must be cherished and also it must be respected.
जी बिल्कुल शगुन जैसा आप बता रही थी कि ये पर्व जो है ये पर्यावरण जागरूकता का भी उत्सव है और भक्त नदी के किनारों की सफाई करते हैं और घाटों को दिए से सजाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी व्रतियों की अटूट श्रद्धा और भक्ति को नमन किया. अपने संदेश में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे छठ जैसे त्योहार भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को मजबूत करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि एकता हमारी साझा परंपराओं और सामूहिक प्रार्थनाओं में निहित है.
Wow, the richness of our folk culture, the songs, they are just, this just sets the tone for Chhath Puja. Now let us tell our listeners about the rituals which are coming ahead. As she was telling us about today's ritual, let me tell you about the rituals which are coming ahead. Over the next few days, the festival will unfold in its full glory. Tomorrow, devotees, they observe khana, a day-long fast that ends in the evening with a special meal of gur ki kheer, jaggery pudding, roti and fruits offered to the deities.
आता है तीसरा दिन जो सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य होता है, जब छठ घाट हजारों दियों से जगमगा उठते हैं और श्रद्धालु डूबते सूर्य को संध्या अर्घ देने के लिए इकट्ठा होते हैं. ये एक ऐसा पर्व है जब अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा की जाती है. अर्घ देने से पहले बांस के बने सूप को फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू और पूजा के सामान से सजाया जाता है. सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा होती है और फिर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा की जाती है. छठ व्रती कमर तक पानी में हाथ जोड़े शांति से आंखें बंद किए अपने परिवार के मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं.
ब्यूटीफुल.
और अंत में छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य और पारण का दिन होता है, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. ये दिन नवीनीकरण, आशा और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है. व्रती सुबह जल्दी नदी या जल स्त्रोत्र पर जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और फिर 36 घंटे का उपवास तोड़ते हैं. पारण के बाद प्रसाद बांटा जाता है और पूजा का समापन हो जाता है.
एंड यस वैष्णवी, छठ पूजा इट इज मोर देन अ रिचुअल, इट्स अ लिविंग थ्रेड इन द वास्ट कल्चरल टैपेस्ट्री ऑफ इंडिया. Though deeply rooted in the traditions of Bihar and Eastern India, but it has found a home in every corner of the nation and among the Indian diaspora across the world, global. So this has also gone global. Mm-hmm. It brings together people of all backgrounds, reminding us that devotion knows no boundaries at all of language, caste or creed. In a country where festivals are the heartbeat of life, Chhath Puja stands tall as a symbol of simplicity, strength and spiritual harmony.
छठ पूजा के पहले दिन जैसे ही सूर्य अस्त हो, उसकी सुनहरी किरणें आपके हृदय को शांति, आपके घर को खुशियों और आपके जीवन को नई ऊर्जा से भर दे। व्रत रखने वाले सभी लोगों के समर्पण और अनुशासन को हम नमन करते हैं। छठी मैया आपको समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अनंत खुशियां प्रदान करे।
Also, listeners, we are wishing you and your family a blessed and blissful Chhath Puja. Until next time, well, keep the faith, cherish the light, and celebrate the spirit of togetherness.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
And Vaishnavi, we are beginning with Leh. In Ladakh, a state-of-the-art catheterization laboratory has been established at District SNM Hospital. This is in Leh. And that this cardiac patients from Ladakh, they will not have to travel to other parts of the country for advanced cardiac care. So this remarkable milestone in advanced healthcare and making accessible at the doorstep, this has been achieved as it has procured and installed under the National Health Mission or NHM. This is first ever life-saving intervention in cardiology to the patients residing in high-altitude areas of Ladakh, and this has been providing much-needed relief to the patients in reducing all their problems and challenges which they face, well, even sometimes on day-to-day basis while traveling to other parts of the country. The first angiography procedure of the cath lab, it was successfully performed on a 45-year-old patient with coronary artery disease. How great is that? Now, we are heading to Kerala, listeners, in the scenic coastal town of Varkala. Well, in Kerala, art, travel and words, they came together recently in a beautiful harmony as the Yanam Festival, a celebration where journeys, they meet stories. The Yanam Festival, this is an initiative by Tourism Department. It brought together writers, travelers and artists to explore the magic of literature and also of travel. We have more on this from our correspondent.
In the coastal town of Varkala in Kerala, where red cliffs tumble into the turquoise waves of Arabian Sea, writers and travelers gathered to craft new stories of journey and discovery. It was a novel initiative of Kerala Tourism to promote travel and literature. Book reading by authors, travel talks, exhibitions, soulful music converted the Yana Festival into something more than a literary event. Visitors described it as an experience that blended Kerala's natural beauty with the power of storytelling, leaving behind not just memories, but inspirations to travel and create. The first day of the Yanam Festival was started with formal inauguration and naturally melted into the world of songs during the cultural evening. On the second day, parallel sessions explored various aspects of travel and literature. Naturally, discussions on writing were not confined to formal or traditional forms. They embraced the spirit of New Age writing as well. There were lively conversations about blogging, vlogging, and creative expressions on social media. Some sessions also delved into the technical side of capturing pictures and videos. However, the festival primarily focused on the literary and creative dimensions rather than the technical aspects. Was that traveling that inspired writing, or writing that drew inspiration from the journey itself? This was a question raised by many participants during the discussions. The renowned writers present their differing views, each shaped by their own experiences. The festival was not a place to find a single definite answer, but rather a space to blend diverse thoughts and perspectives from across the worlds of travel and writing. For many participants, it became an inspiring experience, one that encouraged them to plan and prepare for new explorations in the God's own country, Kerala. Midhi M. Palliruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
और श्रोताओं, अब विजयपुरम की ओर रुख करते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन आइलैंड देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। 2 अक्टूबर को इसमें सक्रियता देखी गई, जिसे देखते हुए ये पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
द्वीप समूह में स्थित बैरन आइलैंड देश का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो समय समय पर सक्रिय होता रहा है। ये श्री विजयपुरम से लगभग 135 किलोमीटर पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है और ये एक निर्जन स्थान है जहां कोई स्थायी आबादी नहीं रहती। जनवरी 2022 में इसमें राख के गुबार लगभग 1.2 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक देखे गए थे। इसके बाद 2024 में भी लगातार हल्की गतिविधियां दर्ज की गयी जिसमें राख के बादल 8,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे थे। अब हाल ही में गत 2 अक्टूबर को बैरन द्वीप में एक विस्फोटक ज्वालामुखी दर्ज की गई। वैज्ञानिक एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार राख और घने धुएं को ज्वालामुखी की चोटी से उठते देखा गया। इसी बीच अंडमान निकोबार प्रशासन ने क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने बैरन द्वीप के लिए एक विशेष क्रूज सेवा शुरू की जो हर 15 दिन के अंतराल पर श्री विजयपुरम से शुरू होकर पर्यटकों और यात्रियों को समुद्र मार्ग से बैरन द्वीप के आसपास घुमाते हुए वापस लाएगा। ये यात्रा एक राउंड ट्रिप वॉयज होगी जिसमें द्वीप पर उतरने की अनुमति नहीं होगी, परंतु यात्रियों को सुरक्षित दूरी से इस सक्रिय ज्वालामुखी का नजारा देखने का अवसर मिलेगा। प्रशासन का मानना है कि ये कदम अंडमान क्षेत्र को एक आकर्षक और नियंत्रित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। ये पहल न केवल पर्यटकों को भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी को नजदीक से देखने का सुरक्षित अवसर देगी बल्कि द्वीप समूह में वैज्ञानिक रुचि, पर्यावरण जागरूकता और पर्यटन तीनों को एक साथ प्रोत्साहित करेगी। भविष्य में ऐसी यात्राएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे सकती हैं, जहां प्रकृति और मानव जिज्ञासा दोनों का संतुलन बना रहे। परिक्रमा के लिए श्री विजयपुरम से मैं पूजा सिंह।
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिपोर्ट। द जीएसटी बचत उत्सव kicked off on 22nd of September as Narendra Modi government slashed GST rates in many sectors, benefiting citizens across the country. Today, our correspondent brings a report on how the next-gen GST reforms, they are boosting the economy of Haryana.
The next-generation GST reforms have provided a significant boost to Haryana's economy. The GST has been reduced across diverse sectors including automobiles, textiles, fertilizers, steel, dairy and renewables. Under the revised tax structure, the GST on automobiles and their parts has been reduced from 28% to 18%. With these tax cuts, vehicles are now cheaper, resulting in an increase in domestic sales and enhancing the state's export potential. Along with this, the tax on farm machinery and fertilizers has been brought down to 5%, lowering farmers' cost and promoting farm organization and generating rural employment. Similarly, lower tax rates on dairy products in cooperatives across Sonipat, Karnal and Panipat have boosted MSME growth, enhanced market competitiveness and created more job opportunities. Talking exclusively to Akashvani News, Bhim Malik, a farmer from Haryana, has welcomed the GST cut, saying he saved around 1,25,000 rupees on his new tractor purchase.
GST relief announced by the government is a very good step. I personally benefited by more than a lakh when I bought a tractor. If I could gain such a significant benefit, the advantage for the entire country will be unimaginable. The GST reforms are set to benefit every section of the society, whether rich or poor.
The new GST reforms have strengthened Haryana's economy by lowering costs, boosting production and creating jobs across key sectors. Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
और शगुन, आप खेल की ओर रुख करते हैं और जानते हैं वहां की हलचल।
यस वैष्णवी, लेट्स टेल अबाउट द लिसनर्स अबाउट मेंस क्रिकेट। वेल, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया बाय 9 विकेट्स इन द थर्ड एंड फाइनल मैच ऑफ द 3 मैच ओडीआई सीरीज एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। अर्लियर द होस्ट ऑस्ट्रेलिया, दे वर बोल्ड आउट फॉर 236 इन 46.4 ओवर्स, सेटिंग इंडिया अ टारगेट ऑफ 237 रन। ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। Matt Renshaw was the top scorer for Australia with 56 runs, while Mitchell Marsh added 41 and Matthew Short contributed 30. Pacer Harshit Rana claimed 4 wickets and spinner Washington Sundar took 2. During India's chase, Rohit Sharma smashed his 33rd ODI century, while Virat Kohli remained solid after bringing up his 50 as India closed in on victory in their pursuit of 237.
Oh, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
On 25th October 1944, freedom fighter Hazara Singh was executed in the Red Fort by the British government on charges of waging a war against the emperor. Hazara Singh hailed from Jhan Gilana village of Hoshiarpur district in Punjab. He served in the Punjab Regiment of the British Indian Army. When Subhash Chandra Bose waged war against the British Empire as the leader of the Indian National Army, Hazara Singh volunteered to join the INA. He served the INA as a Hawaldar in the 3rd Guerrilla Regiment. Hazara Singh took part in the battles in Burma where he was captured by the British. The country will remain indebted forever to the selfless sacrifices made by these soldiers of the freedom movement.
On 25th October 1947, the erstwhile princely state of Mysore got its first democratically elected chief minister. Even after the rest of India attained freedom, Mysore continued to witness political unrest, seeking an end to the rule of the Maharaja. Therefore, the freedom struggle in Mysore continued after 15th August 1947. In order to end monarchy, Mysore Chalo agitation was launched, with political activists from across the region joining it. Heeding the call of the Congress, local community and volunteers joined the Mysore Chalo movement to force the Maharaja to relinquish power and install a democratic and responsible government in the princely state. There was a massive assembly and show of strength in the city on 4th September 1947, in which hundreds courted arrest. In the melee, the police opened fire to disperse a procession and a high school student died of bullet injuries, aggravating the situation.
Sensing the public mood, the last Maharaja, Jayachamaraja Wadiyar, conceded to the agitators' demands and announced his decision to hand over the reins to a democratically elected government, thereby accede to the Indian Union on the 24th of October 1947. The Maharaja's decision to step down paved the way for K.C. Reddy to become the state's chief minister on 25th October 1947. He was a member of the Constituent Assembly. After India's independence, he remained at the forefront of the Mysore Chalo movement and went on to become the first chief minister of the state and served in the post from 1947 to 1952.
अपने अभिनय से, किरदारों से लोगों के दिल के अपनी जगह बनाने वाले और सारा भाई वर्सेस सारा भाई के फेम से लोकप्रियता पाने वाले सतीश शाह का आज निधन हो गया। वे मुख्य रूप से अपने हास्यपूर्ण भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे।
Well, yes, listener, सतीश शाह, the actor, he has worked in several movies, which let me name Kahuna Pyar Hai and Kal Huna Hoon also, Fana, very, very memorable characters he has played. So, I think today it calls for... celebrating his voice and the work that he has done. Let's present that to our listeners by this particular dialogue.
काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, नजरें जमा के बैठे हैं रास्ते पे यार के.
वाह वाह, क्या बात है
डॉक्टर साहब, मजा आ गया.
दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्ने यार के, दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्ने यार के, लाया है कौन इनको फलक से उतार.
क्या बात है छोटे मियाँ, आज आपका मिजाज बड़ा शायराना हो रहा है. इससे पहले तो जनाब से कभी दाद नहीं मिली थी.
डॉक्टर चाचा, वंस मोर प्लीज.
ओके. काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, नजरें जमा के बैठे हैं रास्ते पे यार के,
दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन इनको फलक से उतार के.
सलमान खान ऑल्सो देयर विद हिम देयर इन दिस पर्टिकुलर मूवी. हम आपके हैं कौन
जी.
मशहूर कवि और बॉलीवुड के गीतों के जादूगर साहिल लुधियानवी की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने अपनी उर्दू हिंदी रचनाओं से प्रेम, समाज और राजनीति को संगीत की धुन पर उतारा। उनकी कविता संग्रह तलखिया ने उर्दू शायरी को नई ऊंचाइयां दी, जबकि 100 से अधिक फिल्मों में 700 से अधिक ज्यादा गीतों ने बॉलीवुड संगीत को सामाजिक चेतना से जोड़ा। 1971 में साहिल लुधियानवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब उनके शब्दों की ताकत महसूस करने के लिए आइए सुनते हैं उनका यह अमर गीत।
लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
I think along with listeners, even I didn't want the song to stop there. But yes, we have to talk about other people as well. We were making you listen to Sahil Lodhianvi's creation, listeners. I will now talk about the father of jazz guitar. Well, Eddie Lang, he is credited with being the father of jazz guitar. During the 1920s, he gave the guitar a prominence it previously lacked as a solo instrument, as part of a band or orchestra, and as accompaniment for vocalists. And he recorded duets with many, many famous guitarists as well, and played rhythm guitar with Paul Whiteman Orchestra, and was the favorite accompanist of Bing Crosby. So many people, so many artists, they used to play with him. And the song which is playing in the background, this is Pickin' My Way.
जन्मदिन है हिंदी सिनेमा की अनोखी आवाज शारदा रंजन आयंगर का, जिन्होंने 1960-70 के दशक में अपनी मधुर आवाज से गीतों को अमर बनाया। फिल्म सूरज का तितली उड़ी चार्टबस्टर बना, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आइए सुनते हैं यही गीत।
A good song. Listeners, today we are also remembering Nirmal Verma, novelist and Hindi writer. Well, he is credited as being one of the pioneers of the Nayi Kahani, new story literary movement of Hindi literature, and wherein his first collection of stories, Parinde, it is considered its first signature.
जी बिल्कुल। और उपन्यास जैसे वे दिन, एक चिथड़ा सुख, रात के रिपोर्टर और अंतिम अरण्य में उन्होंने यूरोपीय साहित्य के प्रभाव से भारतीय संदर्भों को जोड़ा। 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार काव्य और काला पानी और 2002 में पद्म भूषण और 2005 में साहित्य अकादमी फेलोशिप जैसे सम्मानों ने उनकी विरासत को अमर कर दिया।
Well, yes, and in his career, well, he has presented various forms of literature, writing story, travelogues and essays, and he penned 5 novels, around 8 short story collections and 9 books of non-fiction, including essays, and also this included travelogues. Listeners, today, we're also remembering another singer-songwriter, a musician, Roger Dean Miller. Well, he's known for his honky-tonk-influenced novelty songs, Honky Tonk, and his chart-topping country hits such as King of the Road or England Swings. Well, after growing up in Oklahoma and serving in the U.S. Army, he began his musical career as a songwriter in the late 1950s, writing hits such as Billy Bayou and Home for Jim Reeves and Invitation to the Blues. These were his songs which he initially penned down. The song which you are listening, this is one of his chart-topping country hits, King of the Road.
King of the Road, third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Whoa, worn out suit and shoes, I don't
don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का.
एंड वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन, एंड वी होप यू हैव अ सुपर्ब एंड अ वंडरफुल डे अहेड.
नमस्कार.